வந்தேகம் ஸ்ரீ குரு ஸ்ரீயத் பதகமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவன் ஸ்ரீ ரூபங் சாகர ஜாத்தங் சகணரோகணித்தம் தம் சதியம் சாதுதம் சபதுதரிஜன சங்கீதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சகணர் லலிதா ஸ்ரீ பிரகணித்தம் நமம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்தோ சாமீதி நம்ம நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவி கௌரவாணி பிரச்சாரிணி நிர்விசேஷ சுண்ணவாதி பாச்சாத்திய தேசத்தாரிணி வஞ்சாக்கல்பத்தருவச்ச கிருபாசிந்து பதிதனங் பாவன வைஷ்ணவோ நம நமோ மகாவதன்னை கிருஷ்ண பிரேம புதாயத்தை கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைத்தன்ய நாம்னே கோர்த்திஷ நம பஞ்சதத்தாத்மகம் கிருஷ்ண பக்தரூப ஸ்வரூபகம் பக்தாவதரம் பக்தாக்கம் நமமி பக்த சக்தி ஆயனுலம்பித புஜ கனக பதாத்தோ சங்கீர்த்தன கபிதர கமலயதக்ஷ விஸ்வம்பரோ திஜவரோ யுகதன்மபாலோ வந்தே ஜகத் பிரிய கிருகர கருணாவதரம் ஹே கிருஷ்ண கருணா சிந்து தீனபந்து ஜகத்பதே கோபேஷ கோபிகாந்தோ ராதாகாந்தோ தப்த காஞ்சனி கௌரங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி விசோபானுசுதே தேவி பிரணாமமி ஹரி பிரியம். தோ ஆஜ் ஜோ தாதாஷ் கோபால் ஹை இஸ் தாதாஷ் கோபால் மே ஜோ பிரதான் கோபால் ஹை அபிராம் ஜி ஜோ ஸ்ரீதாம் ஹை சாட்சாத் ஸ்ரீதாம் ஹை இன்கே திரபாவ திதி ஹை ஔர் ஏ அலௌகிக திரபாவ உன்கி ஹுய ஹை. ஜோ ஸ்ரீதாம் ஹை யே சாரே கோபால் மே சே ஸ்ரேஷ்ட ஹை. சாக்கரஸ் கே சாக்கரஸ் ஜோ ஹை யஹாபே கோயி நியம் நீ ஹோதே ஹை. சாக்கரஸ் மே காந்தே சரே காந்தே சராய கரே கிரணன் கிருஷ்ண சேவே கிருஷ்ண கிருஷ்ண சேவே கிருஷ்ண கராய ஆபன சேவன் বিশ্রাম প্রধান সাক্ষে আত্মসমজ্ঞান. তো এ সাক্ষরস মে কই নিয়ম নেই হ্যাঁ ইয়ে বিশ্রাম জো দূসরে দাসরস মে জো হ্যাঁ কৃষ্ণ ভগবান হ্যাঁ উনকো বহুত মানতে হ্যাঁ আপনি কো তুচ্ছ দাস মানতে হ্যাঁ লেকিন সাক্ষ্যভাবে আছে নেই আত্মসমজ্ঞান. জেসে কৃষ্ণ মেরা মিত্র হ্যাঁ এসে ভাব মে ठाकुर जी का सेवा साक्ष्य भाव में करते हैं. और कांधे चढ़े कभी कभी हार जाते हैं कृष्ण तो वो श्रीदाम कांधे चढ़ जाते में बैठ जाते हैं. वो एक खेल होते हैं जो कोई जो भी कोई हार जाते हैं तो उसको कुछ एक निश्चित दूरी होता उधर वो रखना है फिर आके दूसरे को लेना है ऐसे है साक्ष्य रस की. तो कभी कभी कृष्ण को लेते हैं और कभी हार जाते हैं तो उनको लेते हैं. तो कृष्ण की सेवा करते हैं और कृष्ण से फिर सेवा लेते हैं. तो जब मित्रता नहीं होगा तो खोल के कोई बात नहीं कर सकते हैं. भेद रहेगा दास प्रभु का भेद रहेगा तो खोल के बात मित्रता मित्रता में क्या होता है खोल के बात कर सकते हैं अपने हृदय को हृदय को हृदय के मिला के बात कर सकते हैं नहीं तो उसमें भेद. इसलिए उन्हें संभ्रम ज्ञान रहते हैं. जो दासवा होता है वो बड़े है श्रेष्ठ है इसलिए संभ्रम है. लेकिन इसमें विश्राम ये सब ज्ञान की पूरा लुप्त हो गया कोई ज्ञान इसमें नहीं केवल आत्मसम ज्ञान है कृष्ण मेरा मित्र है बस. तो कोई भी बात करना है उनसे करेंगे खाना खाया हुआ उसको खाएंगे. राखाल सवार जानी सर्वजन आपनी आपनी भोजन करी कड़ाई कड़ाई भोजन आपनी आस्वादी पड़े कड़ाई भोजन. तो अभिराम बोलते हैं कि मेरा राखाल स्वभाव मैंने गाय चराने वाले राखाल के स्वभाव मेरा है पहले मैं खाता हूं उसके बाद कृष्ण के खिलाता हूं ये मेरा स्वभाव है मैं क्या करूं. तो ये है साक्षरस के स्वभाव क्योंकि कृष्ण सबका प्रिय है इसलिए खाते हैं कि ये फल मीठा है या खट्टा है खाने में ऐसे कोई रुचिकर है और जिकर पहले खाके देखेंगे. कोई भोजन भोजन घर से लेके आया कलेवा जो भी है पहले खाके ठीक है कि नहीं तभी कृष्ण को खाएंगे या खाते खाते भी उठा के कृष्ण के मुंह में दे देंगे डाल देंगे अपने पत्तल से. ये है इनमें भाव. तो इसलिए बताते हैं कि राखाल स्वभाव मोर जाने सर्वजन मेरा मेरा जो स्वभाव है ये राखाल गाय रखने वाले गाय चलाने वाले हैं ग्वालवाल हूं और ये सबको सबको विदित है कोई जानते हैं इस बात को. और आगे पहले मैं खाता हूं उसके बाद खिलाता हूं ये मेरा स्वभाव है. ये मेरा यह है। तो वो उनकी स्वभाव ही ऐसे, ग्वाल बाल की ऐसे ही स्वभाव होता है कि अपने आस्वादन करके बाद में खिलाते हैं। दूसरे एक जगह एक पद है धर्रे भाई कानाई फलटा तिमिष्टो, बंगाली का दूसरा पद है। एक ग्वाल बाल कोई चढ़ गए पेड़ पौधे में चढ़ गए फल अच्छा मीठा फल है तो बता रहा है कि ए भैया कन्हैया इसको ले लो ये बहुत मीठा है। तो इसके लिए चाखे पहले चाखेंगे बाद में ठाकुर जी को खिलाएंगे, हमेशा कृष्ण को झूठा करना पड़ता है। तो ऐसे कोई रस में नहीं है जो पांच रस राधा रानी जी हमेशा कृष्ण की झूठा नहीं खाते हैं, लेकिन साख्य रस में कृष्ण हमेशा ग्वाल बाल की झूठा खाते हैं। इसी प्रकार इस प्रधान गोप है, जैसे राधारानी दोनों एक परिवार से है, राधारानी के बड़े भाई है श्रीदाम, जैसे राधारानी माधुर्य भाव में ठाकुर जी का सेवा किया ऐसे श्रीदाम भी ठाकुर जी का सेवा हर भाव से हर तरफ से ठाकुर जी की सेवा श्रीदाम जी ने किया है साख्य रस में। तो इस श्रीदाम जी की ऐसे हुआ, चैतन्य महाप्रभु बंगाल में कीर्तन करते करते मूर्छित होकर गिर पड़े और बताया श्रीदाम श्रीदाम श्रीदाम। तो बोला क्या प्रभु श्रीदाम कौन है, ये जो हम लोग जो भक्त मंडली है इसमें तो कोई श्रीदाम तो है नहीं। बोला श्रीदाम सारे लोग तो आया है, द्वादश गोपाल में सारे गोपाल आ 11 गोपाल आ गए लेकिन श्रीदाम गोपाल आया नहीं, उनके बिना ये लीला में हमको आनंद नहीं आ रहा है। तो बुलाओ बुलाओ कहा है श्रीदाम। तो नित्यानंद महाप्रभु से पूछा अच्छा तो प्रभु बताइए श्रीदाम कहाँ है। बोले जाओ गोवर्धन में है, जल्दी उनको बुलाओ। बोला अभी किसको बुलाया। तो नित्यानंद प्रभु अलग समय आ गए, आके गोवर्धन के पास आके बोला श्रीदाम श्रीदाम बोल के पुकार रहा है। तो गुफा में थे, जो राघव की गुफा आप लोग गोवर्धन में देखे हैं उसके अंदर रहते थे। तो सुना यरी कौन मेरे को बुला रहे हैं, तो लगता है पहचान हुआ आवाज है। तब निकाला, देखे छोटा आदमी है छोटा सा, क्योंकि वो श्रीराम जो वो दापर रूप दापर युग के स्वरूप में थे, छोटा सा कोई है। तो आके बोला ए कौन है तू मेरे को बुला रहे, आप जानते हैं जो ग्वाल वाला है उसके वचन तो बहुत सुंदर मीठा बहुत है लेकिन सुनने में अच्छा नहीं लगता है, तू कौन है तो मेरे को पुकार रहा है श्रीराम बोल के। बोला तू नहीं जानता है, मैं बलराम हूं। बलराम है छोटा सा आदमी कहां से आया, बलराम है बलराम। और ये नियम था यदि कोई भागते थे श्रीदाम तो बलराम उसको पकड़ सकता था, लगभग दोनों का बल जो शक्ति बराबर था तो बलराम पकड़ सकता था। तो इसलिए बोला ये तू बलराम है तू बोल रहा है। बोला अरे तू मानता नहीं मैं बलराम हूं। बोला ठीक है देखूंगा। तो बोला मैं अभी भाग रहा हूं, आप भी मेरे पीछे भागना है, नहीं भाग सकेगा तो हम समझ जाएंगे तू बलराम नहीं है। तो श्रीदाम जी ने भागना शुरू कर दिया। तब गोवर्धन की जो परिक्रमा है ये बहुत बड़े थे, बहुत बड़े, तो उसमें चार चक्कर लगा, एक चक्कर दो चक्कर तीन चार चक्कर लगा के जब पीछे घुमा तो देखा नित्यानंद जी पीछे हैं। तो समझ गया कि ये बलराम के अलावा मेरे पीछे कोई नहीं है दुनिया में भागने वाला, ये साक्षात बलराम जरूरी होगा। तब तुम बलराम है तो कृष्ण कहा गया। बोला कृष्ण ही तो आपको बुलाया है, आप इधर है। बोला मैं कितना दिन से कृष्ण को ढूंढ रहा हूं, सारा जगह ढूंढ रहा हूं लेकिन कृष्ण कहा गया मिल ही नहीं रहा है ब्रज में। अरे यहां तेरे को कहां मिलेगा, वो तो नवद्वीप में चला गया। तो बोला चल नवद्वीप में। नहीं 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 नवद्वीप में नहीं जाऊंगा, नवद्वीप जाने में गर्भ में प्रवेश करना पड़ेगा, गर्भ में प्रवेश करना बहुत यंत्रणा है, मैं नहीं जाऊंगा। बोला नहीं जो भी करना है पहले तो ने कृष्ण आपको बुलाया है उनके पास जाना है, उसके बाद बताना है कि क्या आपका करना है। उनको बुलाया आपको लिया बिना नहीं जा सकता। बोलते अच्छा तब बोला ठीक है चलो, लेकिन मेरा दौड़ते दौड़ते बहुत दिन से नहीं दरो श्रीदाम ने बता रहा है कि मेरा पैर जो है बहुत भारी हो गया, मेरे कंधे में ले चलो। अरे नित्यानंद, अरे मैं ये बात बोलने के लिए भूल गया, मैं मेरा भी बहुत दर्द हो गया, मैं सोचता मैं आपको बोलूंगा कि आप मेरे को ले चलो। तो ऐसे दोनों लगा, तो नित्यानंद बोलता मेरे को कंधे में ले चलो, कि ये शाखा है, इसमें कोई भेद नहीं चलता है। तो और श्रीदाम बोलता मेरे को ले चलो। तो अभी दो ही व्यक्ति है, कौन किसके लेगा। बोला ठीक है अभी चलते हैं, जाके जब महापुरुष से मिला, महापुरुष बहुत प्रेम से आलिंगन किए, एकदम आलिंगन करके रोए और बताया कौन सुख आपको मिला था जो आप शोर के इधर रहा। बोला ऐसे है, आपने यहां आगे हमको बोला है, हम तो ढूंढते रहा बोझ में, हर गली गली कुंज कुंज में ढूंढते रहा, आपको कहीं पे नहीं मिला, और हम बिना बोले आप इधर आ गए हैं। और लेकिन ये बात है, हम तो ग्वाल वाला है, ये सब टाकलू क्यों दिखाई दे रहा है अभी कुल में, ये सब सब छोटे छोटे है, टाकलू टाकलू है, ये क्या, हमारा जो केश है सबका बहुत सुंदर केश है, घुंघराल बाल है, वो कहां का चला गया। तो बोला ये देखो, ये कृष्ण है, ये निमाई के रूप में नवद्वीप में गौरांग के रूप में अवतरण हुआ है, अरे कलियुग है, ये सब हरि कीर्तन करते हैं और सब वैष्णव हो गए हैं। तो इसके साथ में महाप्रभु के साथ रहने लगे, लेकिन ये कमर तक लगभग सारे दूसरे महाप्रभु ऐसे ही महाप्रभु नित्यानंद प्रभु आज बहुत बड़े थे, तब के जमाना के जो लोग थे उसमें सबसे बड़े थे नित्यानंद प्रभु और गौरांग महाप्रभु, वो भी उनके पास अभिरंग पर छोटे छोटे लग रहे विशेष। तो महाप्रभु ने बताया कि ये ठीक नहीं है हमारा साथ ऐसे रहना, तो कुछ करते हैं। तो बताया देखो मंडीरी भट्ट में कभी कभी हम लोग खेलते थे, खेलते समय बलराम एक साइड में और एक साइड में कन्हैया झूलते और श्रीदाम घूमते थे, तो ऐसे आज खेलेंगे, तो दोनों साइड में ऐसे एक साइड में कृष्ण गौरंग महाप्रभु, एक साइड नित्यानंद से कंधे में लटक गया और बोला घूमो, घूमा तो उसमें कंप्रेसर करके छोटा कर दिया, जैसे कलयुग में जैसे चाहिए ऐसे छोटा साइज कर दिया। तो बाद में और महापुरुष ने उनका नामकरण किया, आपका इस युग में आपका नामकरण करना है, आपका नाम है अभिराम या रामदास। इसी प्रकार महापुरुष के साथ कीर्तन में रहने लगे, रहते रहते फिर प्रचार कार्य के लिए उन्होंने कुछ दूर गया और बाद में उन्होंने सोचने लगा, हम तो साथ में नहीं आया, लेकिन कौन कैसे शक्ति लेकर इधर रह रहे हैं हमको तो पता नहीं है, तो इसलिए परीक्षा करना पड़ेगा, परीक्षा करना पड़ेगा कौन कैसे शक्ति लेकर इधर रह रहा है महाप्रभु की लीला में। तो ये जो जो द्वादश गोपाल है ये क्या जीव है, जीव है, जीव तत्व है द्वादश गोपाल, ये भगवान के सांश है, विभिन्न अंश नहीं है, ये कोई साधारण साधारण जीव नहीं, भगवान के साक्षात विस्तार है, ये भी विष्णु तत्व है द्वादश गोपाल जो है। तो उनकी जो प्रणाम है, किसी को दूसरे साधारण जीव द्वादश गोपाल शक्ति के अलावा कोई टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। जैसे आप सुने हैं अद्वैताचार्य ने एक देवी को प्रणाम किए थे, देवी चूर चूर हो गया था, इसी प्रकार ये अभिराम भी विष्णु तत्व है। तो उन्होंने सोचा कि मैं कौशन, ये बंगाली में शब्द कौशन कौशन ही करूंगा, कष के दिखूंगा कौन कैसे है शक्ति। तो इसे अभी बहुत सारे विग्रह बंगाल में, विग्रह हो या वैष्णव को हो, महाप्रभु या शक्तिपूर्ण नहीं है तो वो विग्रह भी फट जाएंगे, प्रणाम करते ही चूर चूर हो जाता है विग्रह। शालग्राम यदि ठीक नहीं होगा उसके भी प्रणाम करेगा वो भी चूर चूर हो जाएगा। तो इसी प्रकार उन्होंने परीक्षा करने लगा, सारे मंदिर के मंदिर खाली हो रहा है, जहां भी प्रणाम करते और एक प्रणाम करेगा फिर उठ के देखेगा कुछ हुआ कि नहीं, नहीं तो फिर दोबारा दो तीन बार प्रणाम करके सोएगा कि बस ये पक्का है। ऐसे प्रणाम करते करते सारा देश में घूम रहे और सब खाली करते जा रहे हैं, तो सबके बहुत डर हो गया, उनके सामने कोई नहीं आते हैं। तो ऐसे जाते जाते एक मदन मोहन मंदिर है, वहां पे जाके उन्होंने देखा तो मदन मोहन जी को प्रणाम किया, कुछ नहीं हुआ, उठा, फिर दोबारा प्रणाम किया तो जो चौकाट है जो दरवाजा की वो पूरा तुरंत बैंड हो गया। फिर भी दो प्रणाम में ऐसे हुआ, तीसरा प्रणाम में उनकी छड़ी से फट गया और खून निकल रहा है पूरा, तो बाद में टूटा नहीं विग्रह। उन्होंने देखा ये शक्तिपूर्ण है, तो मदन मोहन जी साक्षात बात कर सका है, तो बात करते आपने क्या किया मेरे को, आपने मेरे के शरीर से पूरा खून निकाल दिया प्रणाम करके। बोले खून नहीं है, ये तो आपकी सुंदर पसीना है। तो इसके बाद बोला ठीक है, आके मंदिर में बैठे। बोला मंदिर में नहीं बैठा, मेरा नियम है। तो पुजारी से बोला कि आप बाहर मंदिर के बाहर आसन दो, अविराम में बैठाया। और जो स्वीट राइस है खाने में बहुत आनंद लेते थे, बोला बहुत दिन से हम लोग नहीं खाया तो एक साथ में बैठ के खाएंगे। तो स्वीट राइस लाया, मदन मोहन जी बैठ के खाए, पान दिए, पान खाए। इसी प्रकार वहां से मदन मोहन जी अभिराम जी आगे चले। तो फिर विष्णुपुर में जाकर उधर कृष्ण राय विग्रह, उनको भी प्रणाम किया, उनको भी प्रणाम किया, कुछ नहीं हुआ। तीन प्रणाम किया तो उनके घाट एक घाट टेरा हो गया, घाट टेरा कर दिया विग्रह की। और वहां पे उन्होंने भी उनको बैठाया, प्रसाद प्रसाद स्वीटर्स मंगाए, स्वीटर्स खाए, फिर वहां से आ गया। इसी प्रकार परीक्षा करते करते ये सुना कि जो रघुनंदन है, मुकुंद के बेटा है रघुनंदन, ये बड़ी शक्ति संपन्न है, ठाकुर जी को लड्डू खिलाया, देखता हूं ये कैसे शक्ति है। तो जाते जाते श्रीखंड में चले गए। श्रीखंड में जब गया, मुकुंद को पता चला कि पहले ही खबर मिल गया होगा अभिराम आ रहा है, तो अपने बेटा मुकुंद को छुपा के रखा, घर बाहर से अंदर रख के लग कर दिया। तो मुकुंद से मिला, अभिराम जी जाके मिला और बताया कैसे आपका बेटा हुआ, बहुत अच्छे है, तो उनको कहा है थोड़ा मैं प्रणाम करके देखता हूं कैसे है। तो मुकुंद डर गया, बोला नहीं वो तो अपने मामा के घर चला गया, अभी तो है नहीं, तो रहने से मिला था। बोला बहुत मेरा इच्छा है, उनको मिलने के लिए आया था लेकिन नहीं मिला, दुखी होकर चला गया। तो श्रीखंड से कुछ जाके बरडंगा है, बहुत विशाल एक बट वृक्ष है। तो उस बट वृक्ष जो बट वृक्ष है, पहले मुकुंद जी ने महाप्रभु जब उनको शादी करने के लिए बताया था, पहले वहा एक जंगल था, वहां पे कुटिया बना के वहां रुकते थे मुकुंद, बाद में गांव में अपने अपना जो ठाकुर जी है उसका सेवा करते थे। तो उस बरडंगा में उस बट वृक्ष अभी भी है, बट वृक्ष स्थान अभी भी है, वहां पे आके बैठा। इधर पीछे का दरवाजा से रघुनंदन जी निकल गए, आके उनके चरण में पायल था, वो बैठे दुखी होकर बैठे थे अभिराम जी, उनको मिलने के लिए आया था, वो आके मिला। तो बोला अरे तेरा नाम क्या है? बोला मेरा नाम रघुनंदन है। अच्छा तू ही रघुनंदन? तो प्रणाम किया, प्रणाम करते हुए कुछ नहीं हुआ। तो महा अभिराम जी उनको बहुत आलिंगन किया और बाद में इतना नित्य किया रघुनंदन के जो पायल थे, वो पायल जाके आकाई हाट कोई किलोमीटर दूर जाके गिर पड़ा। वो जगह अभी भी है, वहां पे बंगाली में पायल को नूपुर है, तो नूपुर कुंड अभी भी है। तो बताते हैं वो नूपुर जो है पायल है अभी भी है, लेकिन हम गया था देख, बोला यहां नहीं दूसरा जगह है। इसी प्रकार हर जगह घूमते थे परीक्षा कर करके। तो नित्यानंद प्रभु के जो भी बच्चा होते थे, लड़के होते थे, वो प्रणाम करते मर जाता था बार बार। और ऐसे देखकर वसुधा जी और जाह्नवा जी मूर्छित हो जाते थे, नित्यानंद प्रभु जा जाके गंगा में बहा देते थे, स्नान करके आ जाते थे। ऐसे कोई पुत्र ऐसे कर दिया, जब भी वो खबर मिलता कि नित्यानंद का बेटा हो गया तो आ जाते हैं, प्रणाम करते हैं, बस सहा प्रणाम करते ही सहा। तो आखिरी बार वसुधा या जाह्नवा माता जी ने बहुत नित्यानंद प्रभु से बताया कि दूसरे पुत्र हुआ जो वीरचंद्र प्रभु है, वीरभद्र प्रभु, इनके जब जन्म हुए तो जानव माता वसुधा सारे लोग बताए बिल्कुल को बुलाना नहीं, बार बिल्कुल बुलाना नहीं है। तो एक दिन होता है जो मुंह में अन्न दिया जाता है, इसी दिन हो गया सारे विशाल फेस्टिवल, सारे जो महाप्रभु के पार्षद सारे वैष्णव को बुलाए हैं, बुलाने के बाद अभिराम को निमंत्रण नहीं दिया। बकरेश्वर पंडित जी घूमते 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 गया खनाकुल कृष्णनगर, जाकर उनसे मिला। आपको पता नहीं है कि आज काल फेस्टिवल होने वाला है, नित्यानंद के घर उनका नया बेटा हुआ है तो उनके मुंह में अन्न देने वाला है, बहुत बड़ा फेस्टिवल है, आपको बुलाएंगे? बोले नहीं, तो हमको तो बुलाया नहीं। अरे बोला आप प्रधान गोप है, आपको बुलाया नहीं, ये कैसे हो सकता है? बोला मेरे को बुलाया नहीं तो कैसे मैं जाऊं? बोला आपको जाना चाहिए, मेरे को तो बुलाया, बकरेश्वर पंडित ने बताया। तो मालिनी से भी बातचीत किया, तो बुलाया नहीं, कैसे मैं जाऊं? लेकिन बोला हम तो ग्वाला है, रखाल है, हमको हमारा मित्र है, तो उसमें क्या बुलाना जरूरत है, हम ऐसे जाएंगे। और नित्यानंद प्रभु ने बता दिया कि जो नाव चलाने वाले हैं, माझी है नाव चलाने वाले, तो उनको बता दिया कि इस दिन काल, तो वो खरदा जो है पूर्व, जो गंगा जी है इसके पूर्व तट पे है, पश्चिम तट से खानाकुल इधर दूर ही है, उधर से आने वाले हैं। तो आप लोग जो नाव है, आपके नौका जो है, सर पानी में डुबा के रखना और पार नहीं करना, ज्यादा कोई प्रयास कर तो उनको नाम पूछना कौन है, नाम पूछना है। कोई यदि बोलेगा अभिराम है, बिल्कुल उसको पार नहीं करना, उसको आने ही नहीं देना इधर। तो अपने नाव को पानी में डुबो दिए और ऐसे रहा। इधर नित्यानंद प्रभु विशाल फेस्टिवल बनाया, सारे वैष्णव लोग आया, कीर्तन आदि होने आ रहा है, बहुत सुंदर उत्सव है। तो इधर घूमते घूमते वो आ गया, तो आके जो नाव चलाने वाले है उनसे पूछा अरे भाई हमको पार कर दो। बोला नहीं, पार करना मना है। तो आपका नाम क्या है? बोला अभिराम है। अच्छा, जिसको माना किया वही आ गया अभी, आपको तो बिल्कुल नहीं पार करना है। तो बताया, बता पूछ के आओ। तो नित्यानंद के पास बताया, जो आप जिसको माना किया वो आ गया है और बहुत जोरदबस्ती कर रहे हैं हम लोग पार करने के लिए, तो अब क्या करें? बोले बिल्कुल उनको पार नहीं करना, और नाव जो है ये पूर्व तट में लगे रखा था, उधर कोई नाव भी नहीं है। तो फिर अपने उतारी को फैला दिया, फैला के बैठ गया, बस आ गया, गंगा के पार हो गया। ये अपने उतारी गंगा में फैला के उसे बैठ गया, जाके बैठ के गंगा के इस पर पहुंच गया। आया तो बहुत आदर जत्न किया, बैठाया, बैठाने के बाद बोला बहुत भूख लगा, बहुत भूख लगा, तो आंगन में बैठाया। जो भी पकवान बनाया ये सारे पकवान जो वसुधा जानवा जी देते, इतने सारे वैष्णव मंडल के लिए जो भी बनाया पूरा खा गया, अब किसी का प्रसाद नहीं हुआ। तो सारा खा गया, तो नित्यानंद प्रभु ने पूछा, अरे सबके लिए बनाया और हम आप हमारा मित्र हो, कम से कम सबको परोसना है, बाद में आपको खाना है। बोला इसी समय इस पद को बताया था, राखाल स्वभाव मोर जाने सर्वजन, आगे आस्वादी पड़े कराई भोजन। तो मेरा जब नित्यानंद से पूछा तो बताया, मेरा राखाल स्वभाव है, पहले तो खा लू बाद में दूसरों को खिलाऊंगा, ये मेरा स्वभाव है। तो बोला इतना दुखी क्यों हो रहे हो, जाके देखो। तो जाके देखे, जो भी पकाया था एक पतीला राइस होगा तो दो पतीला हो गया होगा। तो इसके बाद सब लोग सारे वैष्णव लोग बहुत सुंदर कीर्तन हुआ, कीर्तन के बाद प्रसाद हुआ। तो बाद में जाते समय बताया, सुना हुआ आपका एक बेटा हुआ है। तो इधर तो दोनों माता लगी, तो बोला दिखाओ, कम से कम आशीर्वाद करो, प्रणाम करो, देखता हूं कैसे शक्ति है। तो इसके बाद नित्यानंद प्रभु ने बाद में लेके आए तो प्रणाम किए, तो उनके प्रणाम में कुछ नहीं हुआ, दो तीन प्रणाम किए, प्रणाम में कुछ नहीं हुआ, तब से जान गया किए। तो जो रघुनंदन है ये कामदेव की जो पदुम्न है, कामदेव के अवतार है, इसलिए उनका रघुनंदन के कुछ नहीं हुआ। ये जो वीरभद्र गोसाई है ये भी विष्णु तत्व है, इसलिए इनका भी कुछ नहीं हुआ। इसी प्रकार घूमते घूमते पूरी चला गया। अभी गोपाल गुरु, गोपाल गुरु तो गोपाल गुरु थे मकरध ध्वज, उनका पहले से नाम था, महाप्रभु ने उनको गुरु बोला, बोला आपका नाम गोपाल गुरु है। तो एक दिन ऐसे हुआ, महाप्रभु का जो जीव है अनावृत चलते रहता है, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जो गोपाल गुरु है वो भी हमेशा 24 घंटा नाम लेते थे, शौच में जाए, प्रसाद में, लघु शंखा दीर्घ शंखा किसी भी जाएगा तो वो नाम को भी अनावृत नाम को भी बंद नहीं करता था। तो एक दिन महाप्रभु ऐसे लघु शंखा के लिए गए थे तो सोचते थे उसी समय हरिनाम नहीं करना चाहिए, जीप पकड़ लिया था, क्योंकि वो बलात् बलात् वो महाप्रभु के मुंह से हमेशा कृष्ण नाम निकलता था, वो ऐसे प्रयास भी करेगा रुका नहीं सकता था, इसलिए उन्होंने जीप पकड़ लिया था लघु शंखा के समय। तो गोपाल गुरु ने देखा, बोला ये क्या करते प्रभु, बोला ये ऐसे इसी समय नहीं करना चाहिए। तो गोपाल गुरु ने बताया, प्रभु होता है ना इसी समय भी यदि मृत्यु हो जाए तो हमारा गति तो ठीक नहीं होगा, तो इससे आप समझ लीजिए कि हमेशा कृष्ण नाम करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कोई भी समय। ऐसे नहीं कि हम दूसरे समय प्रज्वल्प करें और लघु शंखा दीर्घ समय समय हरे कृष्ण मंत्र करें, हमेशा करना है हरे कृष्ण महामंत्र हमेशा करना है। इसलिए महाप्रभु बताते हैं, अमापति सिंह यदि थके सवाकार तभी कृष्ण व्यतिरिक्त ना गाइबार, किशयने की भजने की बा जागरणे अहोर्निश चिंत कृष्ण बोलो हे वदने। तो महाप्रभु बताते हैं हमारा पति आप लोगों का स्नेह है, प्रेम है, तो ये बात है कि कृष्ण के अलावा कुछ गाना ही नहीं है। कैसे, अहोर्निश दिन रात ते समय सोते समय हर समय कृष्ण नाम करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी प्रकार अभिराम जी सुना महाप्रभु को गुरु बोला तो उसको परीक्षा करना है, परीक्षा करना है तो गया पुरी में जाके सुना परीक्षा करना है, तो सारे लोग डर गया। बक्रेश्वर ने बताया, देखो मेरा एक शिष्य है और अपना बेटा और शिष्य बराबर ही होते हैं, तो मेरा एक शिष्य है, यही मेरा अंकुर है, मेरा परंपरा को आगे चलाने वाले, आप उनको प्रणाम मत करो, सावधान। तो जाके महाप्रभु को बताया तो महाप्रभु ने उनके अंदर प्रवेश कर गया, तब महाप्रभु उनके अंदर आवेश हो गया। इसके बाद अभिराम जी प्रणाम किया तब कुछ नहीं हुआ। तो इसी प्रकार ये तीन लोग ही सबको प्रणाम नहीं करते थे, लेकिन जिसको परीक्षा करने के लिए प्रणाम करते थे वो साधारण होगा। हम लोगों को एक अकेला को एक प्रणाम हम सबका हृदय फाट जाएगा। तो इसी प्रकार ये तीन लोग ही जिए हैं। और एक घटना हुआ, जो उनकी जो साथी थी मालिनी, वो अपना ही शक्ति है, तो अपने शक्ति वृंदावन से उन्होंने शक्ति एक कन्या रूप में उत्पन्न हुई और उनको एक लकड़ी की पेटी में बहा दिए थे। वो जाके काजीपुर में जाके रहा था, वहां पे एक फूल की जो बाग था वो सूखा हुआ था, जब वो जो पेटी जाके लगा तब से वो पूरा खिल गया। माली लोग आके देखा, उस पेटी को लेके देखा, बहुत एक देव कन्या है, तो अपने लेके पालन कर रहे थे। तो वहां जो तहसीलदार था मुस्लिम, उनको पता चला, उन्होंने ले जाने के लिए ये किया, तो माली लोग को पकार के लेके आया और बाद में मालिनी भी, उनके नाम मालिनी थी, तो वो मुस्लिम उनको बताया था कि मैं उनके घर में नहीं रहूंगा, उनको जो गौशाला है उसमें ही मैं रहूंगा, और जो काजी है जो मुस्लिम है उनको बोलो उस घर अपने हाथ से सफाई करें, क्योंकि जो गौशाला है चाहे मुस्लिम का हो चाहे ख्रिस्टान का हो चाहे हिंदू का हो किसी का भी गौशाला हो तो वो पवित्र है, वहां पे लक्ष्मी की वास है, जो कि गोबर है उसमें क्या कौन है, लक्ष्मी रहती है, और जो पेशाब है गोमूत्र इसमें कौन है, गंगा जी है। तो गोशाला में गोमूत्र और गोबर, इसलिए मालिनी जी बताया मुस्लिम वो जो वो है उनके घर में, काजी के घर में मैं नहीं रहूंगा, मैं वो गौशाला में रहूंगी, और जो माली लोग है ये भी हमारा सेवा करेगा, यही पका के देंगे, व्यवस्था करेंगे। इसी प्रकार राजी हो गए तो वो उधर रहने लगी। तो अविराम ऐसे घूमते घूमते सोचा कि मालिनी से भी मिलना है, तो नदी जो नदी वो नहाने के लिए जाती थी अपने सहेली के साथ, तो नहाने गई तो नदी के दूसरा पार अविराम को देखा, तो मालिनी सोचती थी उनको मिलना है अविराम से, तो वो जो अपने दासियां थी उन लोगों से बताया कि चलो हम लोग नदी को पार करते हैं। तो दासियां लोग ने बताया कि पहले आप पार करो, बाद में हम लोग पार करेंगे। तो बोला ठीक है। तो ये लोग तट पे रहे और मालिनी पार करके चले गई और अविराम उनको लेके चल दिया। तो इधर आके तुरंत खबर दिया, जब काजी को बताया तो काजी ने तुरंत पुलिस भेज दिया, जाके विक्रमपुर में वहां बैठे थे बैठ के, और बता दिया कि कोई उदासीन कोई सन्यासी आए थे विरक्ति, उन्होंने ले गए। तो जाके उनका जो सिपाही है जाके पूछा, अरे मालिनी पास में बैठे थे वो भी, ओविराम भी बैठे थे, बोला आप उदासीन हो के ऐसे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, किसी मुस्लिम की कन्या है इनको लेके आप लेके आए हो, तो ऐसे बताने से उन्होंने बोला कुछ शक्ति दिखाना पड़ेगा। और क्या हुआ, जब ठाकुर जी बस छोड़ के चले गए मथुरा, सारे ग्वालवाल जितना वंशी फ्लूट थे मुरली वो सर इकट्ठा करके बांध दिया था, बांध के जमुना में बहा दिया, वो जाके उस नदी के तट पे तैर रहे थे। 5000 साल पहले का विशाल एक लकड़ी जैसे बन गया सर मिलकर, वो जो 100 आदमी हिला नहीं सकते उठा नहीं सकते है, उसको उठाया, उसको उठा के फ्लूट बजाना शुरू कर दिया, फ्लूट बजाया। तो वो लोग देखा कि इसके साथ तो लड़ाई करना ये साधारण नहीं है, और बोला तू उठा सकता है, तू लड़ना है हमारे साथ लड़ाई करना है तो पहले तेरा जितना सिपाही है उसको उठा पहले देखता हूं। तो और अविराम तो जाके एक हाथ में उठा दिया, तो जाके वो हिला नहीं पाया उसको। और तू बता, तू लोग बताते हैं कि ये जवन की कन्या है, मालिनी को बोला, मालिनी जाके एक उंगली से उठा दिया उसको, जो सौ लोग हिला नहीं सकते उसको। तो गांव का लोग भी आए थे कि ये साधु है, साधु के जवन है, मुस्लिम की कन्या लड़की जो है वो लेके आए हैं, ये तो ठीक नहीं है। तो गांव का लोग भी, विक्रमपुर के सारे लोग भी आ गए। तो इसी प्रकार बाद में वो लोग देखा, तो सब लोग बताया, तो वो ये डर के लोग चले गए जाके बताया। तो उधर ही उन्होंने रहने लगे, और वो गांव वाले उनको स्वीट राइस आदि सब लाके, तो स्वीट राइस खाने में बहुत आनंद रखते थे। तो उधर उधर रहने लगे, और उनके पास सोचा कि अभी थोड़ा महाप्रभु के साथ पुरी में जाना है तो क्या करें। मालिनी को उस लकड़ी जो है लकड़ी के अंदर फिर सूक्ष्म करके वह रख के चला गया, बोला आप इसके छोड़ दिया, मैं घूम के आ रहा हूं, कहां आपको रखे जाओ। तो इसके बाद गए जगन्नाथ जी को जाके, बहुत पूरी जाके समुद्र में महापुरुष आपने पार्षद के साथ खेला है। तो बाद में महापुरुष ने बताया बहुत भूख लगा, अभी हम क्या करें, बोला ठीक है जगन्नाथ को बोलता प्रसाद खिलाएगा अभी। तो जाके जो अक्षय भट है यहाँ पे आके महापुरुष के सारे पार्षद लोग आके बैठे, और जगन्नाथ जी को बोला जगन्नाथ अपने पुजारी से सारा प्रसाद दिया, बहुत सारे प्रसाद भेजा, प्रसाद खाए। इसके बाद आ गए मालिनी को फिर वो लकड़ी से निकाले, और वो लकड़ी को लेकर उन्होंने चल दिया। इसी समय दो भक्त वृंदावन से गए थे, बोला मैं आपके आश्रय में रहूंगा, तो उनका शिष्य हो गया। जब शिष्य बना तो जो है कृष्णनगर खानाकुल, कृष्णनगर एक है नवद्वीप में, वो अलग है, दूसरा है ये है खानाकुल कृष्णनगर। तो उन दोनों को प्रचार के लिए भेज दिया, कि आप जाके कीर्तन करो। तो प्रचार का ऐसे नहीं कि प्रभुपाद ने सिस्टम शुरू किया, ये पहले से प्रचार है। कि प्रचार किसी को परिचित नहीं है, जानकारी जान पहचान नहीं है, तो आप पहले जाकर के कीर्तन करना है। कीर्तन करते करते जो श्रद्धालु है वो बोलेंगे हमारा घर रुकिए, आप लोग बहुत अच्छा है, क्या है, कहाँ से आया है, आपका मिशन क्या है, सब कुछ पूछते हैं। तो ये सिस्टम है कि पहले आपको कोई परिचित नहीं है तो प्रचार करना है तो जाके धर्मधर का जो हमारा अस्त्र है कीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र की धूमधाम से कीर्तन करना, अपने आप प्रभु की कृपा से आकर्षण हो जाएगा। तो ऐसे लोग आकर्षण हो गया, ऐसे हो गया, तो बाद में वहां से अभिराम जी कृष्णनगर खानाकोल कृष्णनगर जाने के लिए तैयारी कर दिया। जाते समय एक गांव में एक वृद्धा ब्राह्मणी वो रो रही थी, तो अभिराम ने पूछा क्या हो गया, वो बता नहीं रहे थे। बार बार पूछने के बाद बताया कि मेरी ये मेरा ये कि बेटा था, ये गांव की एक देवी है, वो पकड़ पकड़ खा जाती है मनुष्यों को, तो ये कि एक ही लोता मेरा बेटा था वो भी वो देवी खा गई। बोला कहा कि देवी है, दिखाओ दिखाओ कैसे है, तो जाके देवी से बात करने के लिए वो जाके बोले वो मंदिर है, वो डर से नहीं आ रही थी माता जी, जो जिसकी बेटा मर गया वो माता जी वो नहीं जा रही थी, वो दूर से बताया वो मंदिर। हमने अरे मेरे साथ में आना, कुछ नहीं होने वाला है। तो जाके देवी से पूछा ए ये क्या कर रही है, हर दिन ऐसे लोग पकड़ पकड़ खा जाती है तू। बोला मैं तो देवी हूं, मेरा जो आदमी का खून है मेरा बहुत चस्का लग गया, मैं इसके बिना मैं नहीं रह सकता हूं। तो बोला देख आप स्वीट राइस खुद अभिराम खाने में बहुत स्वीट राइस खाने में बहुत रुचि है, बोला स्वीट राइस खाना है आपको, बोला इसमें मेरे को रुचि नहीं है, रुचि नहीं है तो दोबारा तो कोई आदमी का खून खाई ना तेरा दांत पूरा अभी निकल जाएगा। तो अपने आप देखते देखते देवी के दांत बोलते हैं उनके देवी के दांत निकल रहे थे, दांत निकाल गए सड़े, तो तुरंत तो डर गई और डर के समा प्रार्थना किया, बोला पहले ब्राह्मण के बेटा को वापस लाओ। तो ब्राह्मण को बेटा लेके दिया और बताया, बाद में अभिराम से बताया ठीक है मैं अभी नड़मांस हूं और इससे खून नहीं पीऊंगी लेकिन मेरे लिए व्यवस्था करो। तो बोला ठीक है मैं जा रहा हूं, मैं आपके लिए भी व्यवस्था करूंगा, एक एक किलो चावल की चावल की जो राइस है आपको भोग हर दिन लगेगा। तब से वो देवी ने खाना बंद कर और ब्राह्मण को मेरे मच्छी को दे दिया। वो माता जी बहुत प्रसन्न हुए, गांव वाले ने देखा ये कौन है, ये तो साक्षात भगवान जैसे है, ये मर गए थे बच्चे, ये बच्चे कहाँ चले गए थे, कहाँ से मर गए थे, वो आ गया। तो सारे बताया माता जी से, सारे कुछ पूछे, माता जी ने सारे बता दिया। इसके बाद खानाकुल कृष्णनगर आए, भक्त शायद आए कीर्तन किए, कीर्तन करने के बाद वो जो लकड़ी था वो ऐसे करके मिट्टी में लगा दिया। तो वो जैसे हमारे वो साइड में अभी जो ये बना रहे ना बोकुल वृक्ष, तुरंत एक सुंदर बकुल वृक्ष, बहुत विशाल एक बकुल वृक्ष हो गया, बकुल वृक्ष हो गया और बहुत स्तुति करने लगे और ये किया। तो इसी प्रकार और बताया इस बकुल में हमेशा फूल होगा, कभी फल नहीं होगा, और दिव्य वृक्ष है। इसी समय एक ब्रह्मचारी आए, एक भक्त कृष्णदास है, तो उनको बताया कि आप इस बकुल वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं, आप इनको हर दिन पूजा करना है। तब गांव का लोग भी आ गया कि ये अलौकिक साधु है, तो ये कैसे, यहां पे तो कोई वृक्ष नहीं था, कैसे हो गया। तो कोई क्यों नहीं बताया कि एक लकड़ी है, उसे इसे गाड़ दिया मिट्टी में तो ये तुरंत बकुल वृक्ष बन गया। और कृष्णदास ने उनको पूजा करने लगे और अभिराम जी वहां पर अपने ढेरा डाल दिया, यहां रहने लगे। तो कृष्णानंद अवधूत क्या होता है, ये था देवी उपासक, कृष्णानंद अवधूत ब्रह्मचारी थे, और जानते वैष्णव और देवी उपासक तो हमेशा लगा रहते हैं शत्रुता, और ये एक अलौकिक शक्ति, वो जंगल की वो शेर था, वो गुरु भी थे उस गांव के, तो उन्होंने देखा ये क्या है जी, ऐसे वृक्ष कैसे हो गया, तो उन्होंने वो भी शक्ति का सिद्धि थे, उन्होंने जाके फूक लगाते आग लग गया उस वृक्ष में, बकुल वृक्ष में, तो तुरंत कृष्णदास जाके अपने गुरुजी के पास गया, अभिराम के पास गया, गुरुजी ऐसे कोई साधु आया वो वृक्ष के चला रहा है, अच्छा तो तुरंत चरणामृत को एक पतीला दे दिया, बोला जाओ चरणामृत दो, चरणामृत उस वृक्ष में वहां पे डाल दो, छिड़का दो, बंद हो जाएगा। तो जाके तुरंत उन्होंने चरणामृत छिड़का दिया तो तुरंत आग शांत हो गया और वृक्ष जैसे थे ऐसे बन गया। बोला अच्छा मैं ये खेल देखा, ये भी दूसरा खेल दिखा दिया। तो बोला कौन है तेरा गुरु, बुलाओ उसको। तो अभिराम जी आया, कृष्णानंद अवध से बातचीत हुआ, क्या मैं एक लगाया ये बनाया, तुम इसे जलाया क्यों? तो ऐसे बहुत सारे तर्क हुआ, बोला किसका शक्ति है आज देखेंगे, परीक्षा होगा। बोला जो तुम्हारा जो दंड और कमंडल है, एक अग्नि अग्नि होगा, अग्नि परीक्षा होगा, इसमें 7 दिन तक अग्नि जलते रहेगा, तो इसमें मेरा मां है, बहिर्वास है और तिलक, किसी में तिलक रचना मिट्टी लकड़ी में तिलक लगा बना के इसमें दे दूंगा और आपका दंड कमंडल देना है। इसमें जिसका रहेगा उसका जीत होगा, जिसका अग्नि खा जाएगा उसमें उसका हार होगा और वो उसका शिष्य बनेगा। तो भी थोड़ा शक्ति, वो भी शक्ति में सिद्धि था, उसका भी थोड़ा घमंड था, तो उन्होंने बोला ठीक है शर्त हो गया। तो आग आग जलाए, दोनों डाल दिया, डालने के बाद 7 दिन आग बुझाने के बाद उनकी बहिर्वास जैसे थे और उसमें जो को मैं चला गया और चमकने लगा, उनकी जो तिलक है वो भी चमकने लगा और उनकी जो माला थे लकड़ी से तुलसी का पतला, वो जलने में कितना समय लगता वो भी चमकने लगा और उनका दंड कमंडल ढूंढ ढूंढ के राख के अलावा कुछ भी मिला नहीं। तो पहले लोग ईमानदार भी होते थे, तो उन्होंने उन दंड में गए और उन्होंने उनको दीक्षा दे दिया। दीक्षा देने के बाद गांव वाले बहुत परेशान हो गया, गांव के गुरु भी थे अमृतानंद ब्रह्मचारी जी, और वे लोग दोष ढूंढने लगे, उनके पीछे करने लगे, कैसे ऐसे है, ये गुरु थे एक ब्रह्मचारी थे, इसको दूसरा दीक्षा कैसे दे दिया। तो अभिराम जी ने समझाया ये देवी उपासक थे, देवी उपासक वैष्णव बन सकते हैं, वैष्णव इनको दीक्षा दे सकते हैं, ऐसे कोई इसमें कोई दोष नहीं लगता है। तो फिर भी गांव वाले कहा मानने वाले, तो क्या करके किसी को पीछे जब के पड़ते हैं ना तो ढूंढे इसका दोष क्या है, इनका दोष क्या है। तो ढूंढते ढूंढते देखा, कैसे पता किया, बोला ये मुस्लिम की कन्या है जो मालिनी है। तो इन्होंने बहुत उनकी निंदा करने लगे, कहां से आया आप, यहां से भागो, ये गांव में आप नहीं रह सकते हो। तो और जो पढ़ने वाले जो लोग थे व्याकरण आदि शिक्षा पढ़ने वाले, वो भी बहु राम मचाने लगे, इनके रहने नहीं देंगे और उनका निंदा करने लगे। तो इसी प्रकार अभिराम ने सोचा भी क्या किए, ये लोग हमको निंदा करेगा इसका नाश हो जाएगा, मैं तो उद्धार करने के लिए आया हूं, ये कृष्णनगर है तो ये भी जैसे नवद्वीप जैसे पाषंडी लोग थे ऐसे पाषंडी लोग यहां भी है, तो उनको पीछे पड़ गए। तो उन्होंने सोचा क्या करना है, तो महाप्रभु के पास जाता हूं। महाप्रभु के पास गए, इधर पानीहटी में जाके मेला, वहां पे महोत्सव हो रहे थे, जाके अभिराम ने मेला, तो अभिराम ने निमंत्रण किया कि आपको खाना कुल कृष्णनगर आना, यहां पे महोत्सव करना है, खाना कुल कृष्णनगर आना, यहां पे महोत्सव करना है। तो नित्यानंद आदि ने बताया कि प्रभु ठीक है, वो हम लोग सुना है कि ये मुस्लिम, उनके पास जो मालिनी है ये मुस्लिम की बेटी है, तो कैसे हम लोग जाके उधर जाएंगे महोत्सव में। तो अभिराम जी ने अभिराम से महाप्रभु ने पूछा, अभिराम जी क्या बात है, ऐसे ऐसे सारे लोग आपको कानाफूसी कर रहे हैं, क्या बात है? बोले ये ऐसे ऐसे कहाँ है, ये तो ये साक्षात बृंदा देवी है, ये मेरी शक्ति है, बृंदा देवी है, वो तो वृंदावन से आई है, उनको यह भेजा था वो मालिक के घर, यहां से काजी अपने घर में रखे थे, इसे कैसे मुस्लिम है। तो बाद में सब बताया, तो फिर निमंत्रण मान लिया और नित्यानंद जी तो बहुत जाने के लिए कर रहे थे, फिर भी तो बोला ठीक है, महाप्रभु ने बताया आप महाशिव का अपने तैयारी कर दो। तो महाशिव का तैयारी किया, सब इधर हो गया, समय हो गया पहुंचने का, ये लोग कोई नहीं पहुंच रहा है। तो अभी वो क्या है, उद्दंड नृत्य करना शुरू कर दिया। अभी पानी हट, सारा जो पृथ्वी है ये पूरा हिलने लगे उनका नृत्य से। ऐसे नृत्य कर रहे, तो उद्दंड नृत्य कर, पृथ्वी ऐसे ऐसे हिल रहे। तो सारे महंत लोग ने बताया, क्या हो गया प्रभु, क्या हो गया? अरे तुम लोग को पता नहीं है, अभिराम का निमंत्रण लिया आप लोग नहीं जा रहे हो, तो अभिराम के हट से आपको कोई नहीं जी सकते हो, सबका सर्वनाश कर उसके स्वर्ग पृथ्वी पूरा चुरमार कर देगा, पूरा प्रलय हो जाएगा। तो अच्छा चलो। तो और बोले कान सबका बंद कैसे हो गया? और अभिराम वहां से खानाकुल से चिल्ला रहे थे कृष्ण के नाम से, बोला कान कैसे बंद हो गया? बोले वो अभिराम चिल्ला रहा है सब। तो बोले ठीक है ठीक है, अभी तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई चारा नहीं, उपाय नहीं है। तब आ गए इधर महोत्सव, सात प्रहरिया, जैसे सात टोली हुआ, सात टोली में बहुत संकीर्तन किया, वहां पे पंडाल बना के और सारे नगर संकीर्तन हुए। तो उसके बाद महाप्रभु ने बताया कुकिंग के लिए, तो अभिराम बताया कौन कहेंगे? बोला मालिनी करेगी कुकिंग। अरे यहाँ पे अभिराम जी ने एक दिव्य सलवार बनाया, सलवार से गोपीनाथ जी को प्रकट किया। जो आप लोग देखे होंगे कोई कोई, जो खीर गोपीनाथ की जो गोपीनाथ है एकदम एज इट इज, इस प्रकार की गोपीनाथ है, वो रामकुंड है, अभी भी रामकुंड है, उस कुंड से गोपीनाथ को प्राप्त किए है। और मालिनी के पास रसोई घर में जाके गोपीनाथ जी को रखा और मालिनी को बोला जो भी चाहिए ये इनको बोलना है, जो भी सामग्री चाहिए, वो तो गोपाल है कहां कहां से कुछ सामग्री जुटाएंगे, बोला जो भी चाहिए इनको मांगना है मालिनी को। तो और किचन में है, किचन में तो सारे भक्त लोग भी जब सुने तो जाके दर्शन किए, और वहां पे मालिनी जी जो भी मांगते थे वो मदन मोहन जी सारे, गोपीनाथ जी सारे कुछ लाके देते थे। रसोई हो गया, रसोई होने के बाद तो ये लोग कानाफूसी प्रसाद नहीं लेंगे ऐसे ऐसे कर रहे थे, तो महाप्रभु आए और पवन को बुलाया, बोला मालिनी की जो शक्ति है इसको प्रकट कराना पड़ेगा। तो पवन को बताया मालिनी जब भोग की प्लेट लेके जाते रहेगी तब आप आके पवन का अब उनको घूंघट उड़ा देना, और मालिनी तब अपने चार हाथ प्रकट करके वो घूंघट को लगाएंगे, ऐसे बता दिया। तब ऐसे हुआ, भोग की थाली लेके मालिनी जी जब जा रही थी तभी पवन जी अपने हवा से उनकी जो घूंघट है उड़ा दिए है, और अभिराम ले मालिनी चार हाथ निकालो, चार हाथ निकाल के अपने घूंघट समझो, दो हाथ में प्लेट पकड़ा हुआ है, प्लेट ऐसे जमीन में नहीं रख सकते हैं, तुरंत और दो हाथ निकाले और दो हाथ निकाले घूंघट को संभाला। सारे महंत के सामने, सारे महंतों ने देख लिया ये कोई मुस्लिम की बेटी हो सकती है, चार हाथ निकाल देगी। तो तब से उन लोग खुले, तो प्रसाद सारे महंत लोग ने प्रसाद खाया, प्रसाद में पंगत में सब बैठे। इसी समय सारे गांव वाले आ गया और निंदा करने लगे, देखो ये महंत लोग भी कैसे है, साधु लोग भी कैसे है, ये मुस्लिम के बेटी को शादी किया और इसके घर में इसके 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 कुटिया में आके सब लोग प्रसाद पा रहा है, शायद होने से कोई जाति नहीं रहता होगा, वैष्णव में कोई जाति पति कुछ नहीं होता है। तो वैष्णव क्या है, वो दिव्य स्थिति में है, जैसे महाप्रसाद को हम मानते हैं ऐसे जगन्नाथपुरी में महाप्रसाद है, ब्राह्मण भी चंडाल घाट से ले लेते हैं। तो अब दक्षिण भारत के एक ब्राह्मण को बताएंगे जगन्नाथ जी का साक्षात प्रसाद है, ये दूसरे के हाथ से एक पंगत में बैठ के लो, नहीं कर सकता है। तो ऐसे कुरीति है, ये लोग समझ नहीं सकते वैष्णव को, तो निंदा किया। तो अभिराम ने बताया ठीक है ये प्रसाद सबको खिलाऊंगा, तो बोला सबको भी इसे बाद में प्रसाद खिलाऊंगा। तो ये सारे गांव के लोग भाग गए और चले गए, हम लोग नहीं खाएंगे यहाँ, कैसे कोई जाति पति कुछ नहीं, सारे लोग आके इधर प्रसाद खाए, मालिनी बनाई है, ये प्रसाद खाने योग्य है। तो बोला ठीक है सबको प्रसाद खिलाऊंगा, ये बात मत सोचे कि सबको नहीं खिलाऊंगा। तो ये महंत लोग को विदाई दिया, महंत लोग चले गए, सारे प्रसाद महाप्रसाद है। तो उन्होंने क्या किया, एक तो बिल्ली सृष्टि किया अभिराम जी, सारे महाप्रसाद वो बिल्ली ने खा लिया है, और बिल्ली को बताया जब सारे ब्राह्मण लोग जाके रात को सो जाएगा उनके जो पत्र है कुकिंग करने का, वो रात को ब्राह्मण है, वो जो भी पकाया खा पी के सब जो भी बाहर था फेंक के सब धो धा के बर्तन रख दिया। तो रात को बिल्ली जाके सारे बर्तन ठीक कर करके उल्टी कर दिया, उस महाप्रसाद को उल्टी किया। लेकिन ऐसे मशीन उसके अंदर थे जो राइस की पात्रों में राइस उल्टी किया, दाल में दाल, सब्जी में सब्जी, ऐसे उल्टी कर दिया, सब पात्र परिपूर्ण कर दिया। तो जितना ब्राह्मण थे खाना कुल में, सारे ब्राह्मण को घर ऐसे कर दिया। तो इसके बाद सुबह उठे ब्राह्मण जाके देखे खाना पकाने के लिए बर्तन देखे, तो सारा बर्तन पूरा प्रसाद महाप्रसाद से परिपूर्ण है। तो उसमें दिव्य गंध भी निकलते, दिव्य सुगंधी। तो बाद में ब्राह्मण लोगों को बताया, तो बोले ये कैसे हो गया ऐसे, और ब्राह्मणी लोगों ने बताया देखा ये, अरे दूसरे के घर तीसरे के घर सबके घर में ऐसे हो गया, तो कैसे ऐसे हो गया, बातचीत करने लगे तो देखा ये अभिराम ने कैसे कुछ शक्ति से, वो जानते हैं इनके पास शक्ति है, तो किशोर के भेज दिया महाप्रसाद होगा सबको लेना चाहिए, लिया। एक दुष्ट ब्राह्मण ने वो महाप्रसाद को फेंक दिया और सबको बताया, अरे तो लोग खा लिया, मैं थोड़ी खाया, मैंने उनको फेंक दिया। अभिराम को इस बात को पता चला, तो बोला अच्छा तो महाप्रसाद खाने का योग्य नहीं है। फिर बिल्ली को दूसरे दिन रात को बिल्ली को भेज दिया, बिल्ली जाके मुस्लिम के घर जाके गाय की मांस मीट फीट जो खाया हो, बचा हुआ हड्डी मड्डी जो है वो सब खाया, बिल्ली खा के उसके बर्तन में सब आके रात को उल्टी कर दिया, काओ मीट जो भी है ये सब चीज अखाद्य है, वैसे जो ब्राह्मण के लिए एकदम अशुचि है, ये सब उल्टी कर दिया। और आते समय जो उसके कमरे थे वो एक ही कमरे में सब बर्तन थे जो वो सोए हुआ था, तो सोचा ये अवैष्णव है, इसको टास नहीं करना चाहिए। तो जो रंगा बिल्ली है उनको पूछ थोड़ा टास हो गया, तो अभिराम के पास आकर रो रहे थे कि कैसे मेरे को उनको टास हो, अवैष्णव का टास हो गया। तो बोला पूछ निकाल दो, तो पूछ निकाल दिए रंगा बिल्ली। तो इसके बाद वो उठे तो बाद में देखा ऐसे सारे अमद्य है जो खाने का योग्य नहीं है, जो अछूत चीज है, इसको कैसे कैसे आ गया। तो बाद में उन्होंने समझ गया और अभिराम से क्षमा मांगे, उनके क्षमा कर दिया। इसी प्रकार है, और उसके एक शिष्य थे बंगाल कृष्णदास, बंगाल कृष्णदास उनको ठाकुर जी की सेवा के लिए दिए, तो उन्होंने ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे, तो इतना छोटे गांव में जाके मंदिर बने अलग गांव में, दूसरे गांव में, तो वहां पे गए तो उस वहां पे तो इतना व्यवस्था नहीं था, एक माता जी कुछ फूल आदि लेके आई थी, तो ठाकुर जी का सेवा बहुत अच्छे निष्ठा था, सेवा करते करते थोड़ा नजर उनके चला गया, तो बाद में अपने को धिक्कार देने लगा, मैं ठाकुर जी का सेवा करते हुए मैं दूसरे की ओर नजर दिया और सेवा में त्रुटि हो गया, ये ठीक नहीं है। तो उन्होंने सेवा छोड़ दिया, सेवा छोड़ के जो माता जी जो घर से आई थी वो घर चले गए, जाके उन लोग से पूछा कौन गई थी ये फूल आदि लेके, तो बताया। तो उसके बाद में जाके उनको बोला कि बोला पुजारी जी आए हैं, बहुत प्रसिद्ध पुजारी, उनके बैठने दिया, बोला कौन जो फूल लेने लेके गई थी उनको मैं थोड़ा देखने चाहता हूँ अच्छा से। तो देखा, देखकर एकांत तो उनके अलग कमरा में उन्होंने देखे, देखने के बाद और आए और दो काटा लिया, काटा ले अपने आंखों को फोड़ दिए। फोड़ देने के बाद गोपीनाथ भी, इतना प्रसिद्ध भक्त है गोपीनाथ जी, भी उनको बात किया कि देखो बंगाल कृष्णदास जी, शरीर में सबसे जो मूल्यवान वस्तु है वो है आंख है, जिससे अच्छा बुरा को विचार कर सकते हो, उसको आपने फोड़ दिए तो क्या आप, तो मेरा सेवा कौन करेगा, मेरा सेवा करने के दूसरे बात अपना सेवा, आपका सेवा करने के लिए भी, तुम्हारा सेवा करने के लिए भी दूसरे किसी को चाहिए, तो ऐसे क्यों किया, ऐसे आपको नहीं करना चाहिए। तो बहुत समझाने के बाद वो मूर्छित होकर गिर पड़ा, अभिराम जी आ गए, अभिराम जी वहां पे आ गए, आकर देखा उनको मूर्छित सुनकर एक चेतन में आ गए, आते आने के बाद पूछा क्या किया कि सारे बात उन्होंने ठीक से बता दिया। बताने के बाद बोला अच्छा तुम ऐसे कर दिया, ठाकुर जी का सेवा कौन करेगा, कैसे क्या होगा, बोले ठीक है मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, आप इसके लिए धिक्कार दे रहे हो, ठीक है आप केवल गोपीनाथ जी का सेवा करते समय आपको आंख अच्छे दिखाई देगा, दूसरे समय नहीं दिखाई देगा। तो ये बहुत ही उत्तम है, बहुत ही अच्छा है। ठाकुर जी का सेवा, उनको कुकिंग करना है, ये है सेवा करना है, श्रृंगार करना है, अपने तिलक लगाना है, ये सब चीज को दिखाई देगा, दूसरे समय कुछ और दिखाई नहीं देगा। जिसके लिए बहुत सुरक्षा मार्ग उन्होंने बना दिया गुरु जी, तब से उन्होंने वो गोपीनाथ जी के प्रेम से सेवा करते थे। और एक दिन एक गोपाल था, गोपाल के घर दूसरे गांव गांव में उन्होंने मंदिर बनाए थे, वहां पे प्रचार के लिए नित्यानंद आ गया। नित्यानंद और यहाँ पे बताते नित्य सूत पुत्र और शिष्य एक ही होते हैं। इसी प्रकार नित्यानंद आलो बोला, अच्छा तुम्हारा गुरु जी ने हमको बच्चे को प्रणाम कर करके मार दिया, देखिए तुम्हारा तुम में कितना शक्ति दिया है, तो अभी मैं जगन्नाथ प्रसाद खाने से आता हूँ, प्रसाद लेके आओ। तो उन्होंने अभी के लिए, अभी तो ये बंगाल में हूँ, 600 किलोमीटर दूर है जगन्नाथ पुरी, प्रसाद मैं कैसे ला सकता हूँ। तो तुरंत गुरु जी के शरण में गए, गुरु जी आ गए, आके बताया क्या हुआ। बोले जगन्नाथ, बोले ठीक है पंख लगा दिया उसको, उसका नाम क्या पाखिया गोपाल हुआ। तो पंख लगा, उड़ान भर के जाके जगन्नाथपुरी गया और जगन्नाथ को बोलना अच्छे अच्छे प्रसाद भेज दे, तो उनको पंख में इधर बांध दिए और प्रसाद लेके आ गया। तो नित्यानंद ने देखा, वाह अच्छा शक्ति तो बहुत है इनके शिष्य में। तो नित्यानंद बुलाया, दोनों प्रसाद पाए, इसके इससे इनका नाम पाखिया गोपाल हुआ। तब कानो कृष्ण शिष्य थे जो, और बहुत सारी कथा है लेकिन समय की बाउंड्री चला गया। तो इसके बाद जो गोपीनाथ जी थे, वो एक थे उनका नाम था कानो कृष्ण, वो ठाकुर जी का सेवा करते थे। तो उन्होंने समझ गया कि अभी गुरु जी जाने वाले हैं। तो एक दिन एक कारपेंटर आया, कारपेंटर से बोला मेरे मूर्ति बनाओ, मेरा विग्रह बनाओ। तो कारपेंटर ने अविराम गोपाल जैसे विग्रह बना दिया, सुंदर विग्रह बनाए। तो अविराम जी क्या करते थे, रात को उस विग्रह में प्रवेश कर जाते, दिन में फिर विग्रह से निकाल जाते थे। ऐसे करके बहुत दिन तक हुआ, बहुत दिन तक हुआ। और बोला शिष्य जी को पता चला कि गुरु जी जाने वाले हैं, तो उन्होंने बहुत रोया, गुरु जी के चरण में पड़ गिरे। बोला मैं आपके बिना कैसे रहूंगा। बोला देखो बेटा ऐसे नहीं है, मैं तो कहीं नहीं, मैं ये जो विग्रह है, मैं चला जाने के बाद ये विग्रह में मैं हमेशा रहूंगा। तीसरे दिन आज की जो तिथि है, इस तिथि में मधु कृष्ण सप्तमी तिथि आज क्या है, मधु मधु महीना है, मधु महीना के कृष्ण सप्तमी तिथि को उन्होंने प्रवेश किया, दोबारा वापस नहीं आए, आज तक उस विग्रह में विराजमान है। खानाकुल कृष्णनगर, यहाँ पे इनके श्री विग्रह श्रीपाठ अभी भी है, वो कुंड भी अभी तक है, और बकुल वृक्ष भी है, बकुल वृक्ष भी है। वो जो अभिराम जी बोले बोल के गए थे कि फूल लगेगा इसमें, कभी फल नहीं लगेगा, आज तक उसमें कभी फल नहीं लगा। आप लोग जाके सारे लोग उसमें परिक्रमा करते हैं, पूजा करते हैं, और बाउंड्री बना के रखा है, और वो विग्रह गोपीनाथ जी भी है। तो आप लोग वर्धमान से आरामबाग जाना है, आरामबाग से खानाकुल, वहां से पूछना है, वह राजा राममोहन राय की गांव भी है, जन्म स्थान है, वहां पे कॉलेज है। तो लोग ज्यादा नहीं जानते, तो वो बोलना है खानाकुल जाके बोलना है हमको कॉलेज में जाना है। तो कॉलेज के पास में ही अभिराम ठाकुर की जो श्रीपाठ है वो अभी तक है, और मालिनी की, मालिनी भी चली गई थी उससे पहले अभिराम से पहले, उनकी भी एक श्री विग्रह है चार हाथ वाले, वो मंदिर के पीछे रहते हैं, कोई भक्त यदि चाहते हैं तो उनको दर्शन मिलते हैं, दर्शन कुछ भेंट देना पड़ता है, दर्शन हो जाते हैं। तो अभिराम जी वहां पे विराजमान है, उनका श्रीपाठ बहुत सुंदर विग्रह है, बहुत सुंदर मंदिर है, और बकुल वृक्ष और कुंड सब कुछ अभी तक विराजमान है। आप लोग जो भी जाना है जाके दर्शन कर सकते हैं। इतना बोल के अपनी वाणी को विराम देते हैं, समय बहुत सारी कथा थी लेकिन समय की पाबंदी है। इतना बोल के अपने वाणी को विराम देते, जय श्री प्रभुपाद के समय तो श्रद्धा वृंद के हरे कृष्णा।